नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मुइज़्ज़ूर से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा, भारत मालदीव की मदद के लिए हमेशा सबसे आगे रहा है। मालदीव में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा, नक्सलवाद विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा। प्रधानमंत्री ने आज सार्वजनिक पद पर 23 वर्ष पूरे किए। गुजरात सरकार इस अवसर पर आज से विकास सप्ताह मना रही है। इसराइल ने पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पश्चिम एशिया में तनाव बरकरार। ISSF जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा। और शारजा में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम इंग्लैंड का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने हमेशा ही मालदीव के लिए प्रथम उत्तरदाता की भूमिका निभाई है। नई दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मुइज़्ज़ूर के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री ने एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी किया। इस वक्तव्य में कहा गया है कि भारत ने हमेशा एक पड़ोसी के रूप में अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। उन्होंने कहा कि भारत ने मालदीव के लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पेयजल उपलब्ध कराया और कोविड के दौरान टीके भी दिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं।
मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए पुनर्विकसित हनीमाधु एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। अब ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भी तेजी लाई जाएगी। थिलाफुशी में नए कॉमर्शियल पोर्ट के विकास में भी सहयोग दिया जाएगा। आज भारत के सहयोग से बनाए गए 700 से अधिक सोशल हाउसिंग यूनिट्स हैंडओवर किए गए हैं। मालदीव के 28 आइलैंड्स पर पानी और सीवरेज प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मालदीव का निकटतम पड़ोसी और करीबी मित्र है। उन्होंने कहा कि हमारी पड़ोस प्रथम नीति और सागर विजन में भी भारत का एक मालदीव का एक महत्वपूर्ण स्थान है।
हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों में भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। चाहे मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है।
अपने वक्तव्य में डॉ मुइज़्ज़ूर ने कहा कि उन्होंने तथा प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों की सफल विकास यात्रा पर नजर डालते हुए विस्तार से चर्चा की। उन्होंने दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग की रूपरेखा भी बनाई। डॉ मुइज़्ज़ूर ने कहा कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करने पर एक व्यापक विजन दस्तावेज पर भी सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डॉ मुइज़्ज़ूर के साथ मालदीव में हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। मालदीव में रुपे कार्ड भुगतान का भी शुभारंभ किया गया। श्री मोदी और डॉ मुइज़्ज़ूर ने इस तरह का पहला लेन देन किया। दोनों राष्ट्रों के बीच भ्रष्टाचार से निपटने, न्यायपालिका, युवा तथा खेल के क्षेत्रों सहित कई समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे पहले मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मुइज़्ज़ूर का आज सवेरे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। डॉ मुइज़्ज़ूर को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में डॉ मुइज़्ज़ूर ने राजघाट का दौरा किया और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ूर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर भारत की 5 दिन की राजकीय यात्रा पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार के बेहतर केंद्र राज्य समन्वय से देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गृहमंत्री ने कहा कि नक्सली हिंसा की घटनाएं 16,000 से घटकर लगभग 7,700 हो गई हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले साल तक ये संख्या और कम हो जाएगी। श्री शाह ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु में 70% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।
वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा।
श्री शाह ने कहा कि नक्सलवाद विकास के राह में सबसे बड़ी बाधा है और इससे किसी का भला नहीं होने वाला। श्री शाह ने नक्सलवाद से जुड़े सभी युवाओं से हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ समेत नक्सल प्रभावित राज्यों से करीब 13,000 युवा हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक पद पर आज 23 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 2001 में आज ही के दिन श्री मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। एक रिपोर्ट।
केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के शुरू किए गए कई कल्याणकारी कार्यक्रम गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की पहल से प्रेरित हैं। गुजरात मॉडल कहे जाने वाले ये उपाय जल संरक्षण, पौधारोपण अभियान, संविधान का उत्सव मनाने, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने से संबंधित हैं। श्री मोदी ने जन भागीदारी या शासन में लोगों की भागीदारी पर बल दिया है। प्रधानमंत्री का शुरू किया गया बहुचर्चित जल जीवन मिशन 2004 उत्तरी गुजरात के पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए शुरू किए गए सुजलाम सुफलाम जल अभियान के अनुभव से प्रेरित है। ये गुजरात के लोगों की पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नर्मदा नदी का पानी लाने, नदियों को जोड़ने और वर्षा जल संचयन पर केंद्रित है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जनसेवा की लंबी यात्रा समूचे जीवन को राष्ट्रहित और लोगों के कल्याण में समर्पित करने का प्रतीक है। गुजरात में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य की 23 साल के विकास यात्रा को चिन्हित करने के लिए विकास सप्ताह का जश्न आज शुरू हो गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अन्य मंत्रियों के साथ विकास की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भारत विकास प्रतिज्ञा ली। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अगले 7 दिन के दौरान 3,500 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
7 अक्टूबर 2001 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जिसके साथ ही विकास की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। आज की तारीख में निरंतर विकास यात्रा 23 साल तक पहुंची है। इस बहुमुखी विकास यात्रा और श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन की सफलता को उजागर करने के लिए पूरे राज्य में आज से 15 अक्टूबर तक विकास सप्ताह मनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने ऊर्जा शक्ति, जल शक्ति, ज्ञान शक्ति, जन शक्ति और रक्षा शक्ति जैसे 5 स्तंभों पर गुजरात के विकास की नींव रखी थी। श्री मोदी के नेतृत्व में राज्य में आए परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए 23 प्रतिष्ठित स्थलों पर विकास वॉक भी आयोजित किए जा रहे हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
जम्मू कश्मीर और हरियाणा की 90-90 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव की कल मतगणना होगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के 873 और हरियाणा के 1031 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच 20 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्ट्रांग रूम्स और मतगणना हॉल में पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी सुरक्षा प्रबंधों की निगरानी करेंगे।
हाल ही में तीन चरणों में हुए चुनावों में भारी मतदान दर्ज किया गया। अब 873 प्रत्याशियों का बागी ईवीएम उसमें कैद है। उसे देखना बाकी होगा कि कौन से सदस्य चुनाव जीतकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पहुंचेंगे और कौन सी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम होगी। इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी पांडुरंग केपोली ने कहा कि कल होने वाली सुरक्षित और सुचारू मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल।
जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के जिलाधिकारी विशेष महाजन ने कहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
देखिए, जिस दिन से हमारे स्ट्रांग रूम सील किए गए थे और उससे पहले भी वहां पे सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है। पैरामिलिट्री, पुलिस, एक्सेस कंट्रोल, इन सब चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। सीसीटीवी की निगरानी में हर चीज है, जिसको मॉनिटर कॉन्स्टेंटली किया जा रहा है बाय द पुलिस अथॉरिटीज, बाय द पैरामिलिट्री जो मौके पे तैनात है, और हमारे आरओ स्वयं भी वहां पे जाते हैं और ऑफिसर्स की तैनाती है ताकि वो पूर्ण रूप से निगरानी रखें।
हरियाणा में सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 90 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि ये मतगणना केंद्र सभी 22 जिलों के मुख्यालयों में बनाए गए हैं।
लोक निर्णय,
जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के चुनावी परिणाम
कल 8 अक्टूबर सुबह 9 बजे से।
मतगणना की पल पल की खबर,
हर सीट की सटीक जानकारी,
संवाददाताओं से ताज़ा हाल
और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण।
आकाशवाणी गोल्ड सहित अन्य फ्रीक्वेंसीज पर सुनिए
लोक निर्णय।
दिल्ली की एक अदालत ने आज नौकरी के बदले जमीन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके पुत्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की जमानत मंजूर कर ली है। प्रत्येक आरोपी को 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। केंद्र सरकार दिल्ली एनसीआर में 40 से अधिक स्थानों पर 65 रूपये प्रति किलोग्राम पर टमाटर बेचेगी। उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन में नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनसीसीएफ मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई। ये वैन राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न स्थानों पर टमाटर बेचेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। आज इसराइल पर हमास के हमले को 1 साल पूरा हो गया है। इस हमले में पश्चिम एशिया के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया था। कई मोर्चों पर चल रहे सैन्य अभियानों और नागरिकों के हताहत होने से क्षेत्र में अत्यधिक तनाव बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
पूरे इसराइल में एक भावुक दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह की पहली रोशनी के साथ दक्षिणी इसराइल के नोवा संगीत उत्सव के स्थल पर एकत्रित हजारों लोग एक वर्ष पहले क्रूर हमले में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तेल अवीव में कल काफी सतर्कता बरती गई। इसके बाद हजारों लोग हमले के पीड़ितों के सम्मान में एकत्रित हुए। इसराइली सेना गजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर सिलसिलेवार हमलों को अंजाम दे रही है। इस संघर्ष में 41,000 से अधिक फलिस्तीनी मारे गए हैं और गजा में भीषण मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है। पूरी रात गजा के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्ला ने हमले तेज करते हुए इसराइल के हाइफा शहर पर रॉकेट दागे। इस हमले में कम से कम 10 लोगों के जख्मी होने की खबर है और काफी नुकसान हुआ है। इसके जवाब में इसराइली बलों ने दक्षिणी बेरूत में बमबारी की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
पेरू के लीमा में जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप के अंतिम दिन दीपक दलाल, कमलजीत और राजचंद्र की तिकड़ी ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। भारत के जूनियर निशानेबाजों ने 13 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 24 पदकों के साथ चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल किया। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम ग्रुप बी के मैच में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच शारजाह में मुकाबला होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने द्विभाषी साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मुइज़्ज़ू से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा, भारत मालदीव की मदद के लिए हमेशा सबसे आगे रहा है। मालदीव में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा, नक्सलवाद विकास के राह में सबसे बड़ी बाधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सार्वजनिक पद पर 23 वर्ष पूरे किए। गुजरात सरकार इस अवसर पर आज से विकास सप्ताह मना रही है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।